ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ कैसे बने, कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को संगम युग में सारे कल्प के लिए खजाने जमा करने का गोल्डन चांस देते हैं। उसके लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा का हमें इशारा मिला है कि समय बहुत थोड़ा है और मंजिल हमारी दूर है, प्राप्तियां हमें भरपूर करनी है। इसके लिए आवश्यकता है पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की। जब तक पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं होगी तब तक हम अपनी संपूर्णता की मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल ही दिया है तीव्र पुरुषार्थी भाव का। लेकिन चलते चलते हम देखते हैं हमारे पुरुषार्थ में शिथिलता आती है और हमारे पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाती है। इसके लिए आवश्यकता है कुछ एक बातों को अपने बुद्धि में रखने की। सबसे पहली बात है, बाबा ने पिछले मुरली में भी कहा है कि आने वाला समय बहुत नाजुक होगा, अर्थात बहुत समस्याएं हमारे सामने आने की। उस समय हम निश्चिंत होकर तपस्या नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो नाजुक समय आने के पहले हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना जरूरी है। उसके लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर समय हमारे हाथ से चला जाता है तो हमें केवल हाथ मलते ही रहना होगा। पश्चाताप के सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहावत भी है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो अभी हमारे हाथ में समय है जिसका पूरा हमें लाभ लेना है और पुरुषार्थ में दृढ़ता पूर्वक तीव्रता लाना ही है। दूसरी बात है, तीव्र पुरुषार्थ बनने के लिए सदा हमें याद रखना है सारे कल्प में हमें केवल एक ही बार भाग्य बनाने का चांस मिलता है। सारे कल्प में हमें केवल एक ही बार भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिलता है। और सारे संसार को जो भाग्य बांटता है, सारे संसार का जो भाग्य विधाता है, वो हमारा बाप है। हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं, इसलिए जितना चाहे हम भाग्य लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में थोड़ी सी भी हमें कसर नहीं रखनी है। 200 नाखून का जोर लगाकर हमें सारे खजाने बाबा से लेना है। बाप हमारा सागर है, तो सागर के बच्चे मास्टर सागर हमें बनना है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। अगर पुरुषार्थ में साधारणता होगी तो ये गोल्डन चांस का पूरा लाभ हम नहीं ले सकेंगे। तीसरी बात है, तीव्र पुरुषार्थ बनने के लिए बाबा ने कहा है अचानक और एवरीडी, ये दो शब्द सदा हमारे कानों में गूंजते रहे। जब ये दो शब्द हम भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ में साधारणता आती है। लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो कभी भी कल और काल पर भरोसा नहीं रखते हैं। कोई एक बल एक भरोसे से तीव्रता से आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और वर्तमान का भरपूर लाभ लेते हैं। समझदार व्यक्ति वो है जो भूत और भविष्य के बारे में न सोचकर वर्तमान समय का पूरा लाभ लेता है और स्वयं को मालामाल करता है। इसलिए कहते हैं, भूत है सपना, भविष्य है कल्पना और वर्तमान है अपना। तो अपने हाथ में वर्तमान है, इसके लिए वर्तमान का हमें पूरा लाभ लेना है। चौथी बात, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए हमेशा याद रखें कि मैं आत्मा रूपी घोड़ा इस बेहद की रेस में दौड़ रहा हूं। भगवान की मुझ पर मेहरबानी हो चुकी है, जिस कारण उन्होंने मुझे इस आध्यात्मिक रेस में दौड़ने का चांस दिया है। लेकिन रेस का जो घोड़ा होता है वो हमेशा एक्टिव अलर्ट रहता है और पूरे दम और खम के साथ दौड़ता ही रहता है और प्राइज विनर बनता है। तो जितने भी 8-10 लाख बाबा के बच्चे हैं, ये सारे इस रेस में दौड़ रहे हैं, उसमें मैं भी दौड़ रहा हूं, ये दर्श सामने रखते हैं तो पुरुषार्थ में शिथिलता नहीं आ सकती है।
प्रभु का ध्यान कीजिए।
जब हम रेस को देखते हैं तो जो रेस में आगे सदा रहते हैं, पूरे जोश और होश के साथ दौड़ते हैं, उन्हें देखकर हमें खुशी होती है। और पीछे जो थका हुआ हारा हुआ दौड़ता है उसको देखकर हमें तरस आता है, रहम आता है। तो ये जो हमारी रेस है, बाबा वतन से देखते रहते हैं, तो हमें सदा याद रखना है कि इस आध्यात्मिक दौड़ में मेरा जो आत्मारूपी घोड़ा है तीव्रता से आगे ही आगे बढ़ता रहे तो बाबा देखकर हमें खुश होंगे। पांचवी बात, तीव्र पुरुषार्थ बनने के लिए सदा याद रखें कि स्वयं भगवान मेरा टीचर है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाएंगे, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो सर्वशक्तिवान परमात्मा साकार माध्यम से हम सभी को पढ़ाते हैं और ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो कहावत भी है, टीचर शोज स्टूडेंट्स और स्टूडेंट शोज टीचर। इतना ऊंच से ऊंच परमात्मा हमारे टीचर हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ऊंची स्थिति श्रेष्ठ स्थिति बनाना। तो श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही हम अपने टीचर का नाम बाला कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के बजाय कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी में हमें चार सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और इन चार सब्जेक्ट में से मुख्य सब्जेक्ट है योग का। योग में ही हमारी रेस है। जितना ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होता है उतना योग आगे बढ़ता है। जितनी दिव्य गुणों की धारणा हम करते हैं योगाभ्यास सरल होता है, और जितनी हम बाबा की सेवा करते हैं अनेकों की दुआएं प्राप्त करते हैं उतना योग हमारा सहज होता है। तो योगाभ्यास में हम दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते रहें, ये अगर आप चाहते हैं तो उसके यथार्थ विधि को जानना बहुत जरूरी है। और मैं अपने अनुभव के आधार से ये कहना चाहूंगा कि योगाभ्यास में विशेष मन और बुद्धि इन दो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। ये दो बच्चे द्वापर युग से माया के संग में आए और वो बहुत शैतानी करते रहे, जिसके कारण जो भी खजाने आत्मा के पास थे सारे गंवा दिए। अभी उन्हीं दोनों बच्चों को, मन बुद्धि को अपने अनुशासन में रखना है, नियंत्रण में रखना है, और पुनः खोए हुए खजानों को हमें प्राप्त करना है और स्वयं को माला माल करना है। तो मन और बुद्धि के बारे में पांच बातें आपको बताते हैं। वो पांच बातों पर अगर ध्यान देंगे तो गारंटी है आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। पहली बात, योगाभ्यास के लिए मन कैसा हो, बुद्धि कैसी हो। मन शांत और शीतल और हल्का हो, शांत और शीतल और हल्का मन ही लंबे समय तक मन मना भव का अजापा जाप करने में सक्षम होता है। बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो, ऐसी बुद्धि योगाभ्यास में लंबे समय तक कार्यरत रहती है। और योगाभ्यास में बुद्धि की विशेष भूमिका होती है, इसलिए इस योग का दूसरा नाम बुद्ध योग भी है। दूसरी बात है, जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मा तो ये शक्तियों का पुंज है, लेकिन आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है और कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना जरूरी है। उसका सूक्ष्म अंतर जानना बहुत जरूरी है। इसमें कंफ्यूजन होने के कारण योग कठिन लगता है। तो आत्मा की जो देखने की शक्ति है, विजुअलाइजेशन पावर है, वो बुद्धि है, और सोचने की शक्ति जो है वो मन है। तो बाबा ने हमें जन्मदिन की गिफ्ट दी है, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र बुद्धि रूपी नेत्र, ज्ञान का नेत्र। ये नेत्र हमेशा हमारा खुला हो और इस नेत्र में प्रतिदिन ज्ञान का अंजन लगाते हैं तो इस नेत्र की रोशनी हमारी बढ़ती जाती है। और मन जो है ये सोचने की शक्ति है। एकांत में बैठकर हमें इन दोनों शक्तियों में सूक्ष्म अंतर महसूस करना है, तभी उन दोनों शक्तियों का हम अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या संबंध है। बाबा ने पिछले मुरली में कहा, मन जीते जगत जीत आपको बनना है। आज तक कोई मन जीत जगत जीत नहीं बना है। ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियों के अलावा, लेकिन हमें मन को कैसे जीतना है उसकी विधि को जानना बहुत जरूरी है। उसकी बड़ी सरल विधि आपको बताते हैं। तो इनके संबंध को बहुत जानना अच्छी तरह से जरूरी है। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है। और मन जो है केवल बुद्धि का फॉलोअर है। तो मन को जीतने के लिए मन को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन उसका जो बॉस है बुद्धि, उस पर हमें नियंत्रण प्राप्त करना है। अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र को बिजी रखना है, बाबा पर बिठाना है। चौथी बात है, इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कैसे प्रयोग में लाएं। सबसे पहले हमें स्वयं को आत्मा समझना है, ज्योति बिंदु के स्थिति में स्थित होना है। उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र प्यारे शिव बाबा पर परम धाम में या सूक्ष्म वतन में एकाग्र हो। बुद्धि से बाबा को देखना माना, बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना, सीधी बात है। चलते फेंते उठते बैठते बुद्धि से बाबा को देखते रहें और कर्मों से हम कर्म करते रहें। लेकिन बुद्धि से बाबा को हम देखते हैं, थोड़े समय के बाद बुद्धि हमारी विचलित होती है, वहां से हट जाती है। तो उस समय हमें कनेक्शन अगर पुनः जोड़ना है तो बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करे कहाँ है, चेक करे और उसको चेंज करे, बाबा पर उसको बिठा दे पुनः। तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाती है, उतनी हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती जाती है। आज भी बाबा ने स्लोगन में कहा कि बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करने की मेहनत करते ही रहना है। तो कनेक्शन जुड़ते ही शक्तियों का कलेक्शन जमा होना शुरू होता है। इसलिए बाबा की सुंदर छवि हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखते ही रहना है, देखते ही रहना है। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है और उसके शीतलता का आनंद लेता है और झूमता रहता है, तो ऐसे हमें ज्ञान सूर्य बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम की सुंदर जो छवि है, उनको बुद्धि रूपी नेत्र से बहुत अच्छी तरह से देखना है। बाबा सबसे सुंदर हैं, सबसे सुंदर हैं और सबसे शक्तिशाली हैं। तो उनकी कंपनी को हमें एंजॉय भी करना है और उनसे हमें शक्तियां भी ग्रहण करना है। सफल योगाभ्यास अर्थात स्वयं को शक्तियों के खजाने से भरपूर करना। लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, ऐसे शक्तिशाली आत्मिक स्वरूप में बैठना जरूरी है। उसके बाद जब बुद्धि बाबा को देखती है तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे बहुत शक्तियां आत्मा ग्रहण करने लगती हैं और धीरे 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 आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। तो एकांत में बैठकर बस बाबा ही बाबा हमारे नैनों का नूर बन जाए, हमारे दिल की दुनिया में बस बाबा ही बाबा हो, बाबा ही हमारा संसार हो, क्योंकि बाबा को ही पारसनाथ कहते हैं। पारसनाथ अर्थात पा रस नाथ, वो एक ही ऐसे दुनिया में नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। वो सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। इसलिए बाबा से कनेक्शन जोड़ना है और शक्तियां हमें भरपूर करना है। पांचवी बात है, मन बुद्धि को सदा माया दुश्मन से हमें सेफ रखना है, क्योंकि हम दुश्मन के राज में हैं, तो दुश्मन से सेफ्टी बहुत जरूरी है। उसके लिए सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही हम युद्ध के मैदान में कर्म क्षेत्र में उतरें, तो माया दुश्मन मन बुद्धि पर वार नहीं कर सकती। अगर वार भी करती है तो उसका असर उस पर नहीं होता है। तो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में मस्त रहें तो दुनिया की बातें, दुनिया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं, और एक ही बाबा को हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और इस योग की रेस में बहुत अच्छी तरह से उड़ते रहते हैं, उड़ती कला की अनुभूति करते रहते हैं। तो अभी हम थोड़े समय के लिए बहुत सुंदर योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। बोलो करना चाहते हैं सभी, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्योंकि बाबा का इशारा है अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा जो हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं उसकी ब्यूटी है अनुभव की अथॉरिटी बनना। तो सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। तो बहुत सुंदर योग की अनुभूति में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में चैतन्य मंदिर में मैं आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी दीपक के चहुओर सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल लाइट का औरा अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। शांति की सजीव तरंगे शांति वन में चारों ओर फैल रही हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारा चमक रहा हूँ। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं। इस सृष्टि रंगमंच से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी और निराली दुनिया है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर और हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह, प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरों में मैं आत्मा लहरा रही हूं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। कितनी न्यारी और प्यारी है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओह, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा की सुंदर छवि को मैं आत्मा देखती ही रहूं, निहारती ही रहूं। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे संसार हैं, बाबा बाबा हे मेरे प्यारे बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, गोते खा रही थी, छटपटा रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपने दिल तख्त पर बिठा दिया बाबा। दिलाराम बनकर मेरे दिल को सच्चा आराम दिया बाबा। जो उपकार आपने मुझ पर किया और कोई नहीं कर सकता बाबा, कोई नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर से, शक्तियों की प्रखर किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, मैं आत्मा अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य बाबा से निरंतर शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं भगवान के सान्निध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। बाबा आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं, यही मेरी आश है बाबा। बाबा मेरी एक और मीठी आश है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे शिव साजन के प्यार का अखंड दिया जलता रहे, बस जलता ही रहे, और मैं आत्मा सजनी शिव साजन के महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, संगम की हर घड़ी उनके ही संग में बिताती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा वापिस निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ, और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं और वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही हैं। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मेरे पिता निराकार महाज्योति बिंदु हैं और मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। निरंतर उस महाज्योति से मुझ ज्योति पर शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। ओम